কাহানি
আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ
আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ
ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ والصلاه والسلام عليك يا نبي الله
والصلاه والسلام عليك يا نبي الله
وعلى اليك واصحابك يا نور الله
وعلى اليك واصحابك يا نور الله
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اپنے پروگرام سنو کہانی میں جب ہم نے آپ کو ویلکم کر لیا ہے خوش آمدید کہہ لیا ہے تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین کا فرض کیا ہے اب وہ توجہ سے کیا سنیں
کہانی
سنیں جی ہاں بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہونے والی ہے اور بہت اچھی کہانی ہونے والی ہے اور اس کہانی میں ایک چھوٹی سی نیکی کے بارے میں سنیں گے کس کے بارے میں ہاں وہ ہوتی تو چھوٹی سی ہے لیکن حقیقت میں ہے وہ بہت بڑی حقیقت میں کتنی بڑی ہے بہت بڑی اب وہ کون سی نیکی ہے کیا ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے پیارے بچوں دیکھیں ہمیں اپنی زندگی میں نا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے
ہے
نا بہت سارے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرتے بلکہ چھوٹی چھوٹی ساری نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اب مثال کے طور پہ ایک نیکی کیا ہے راستے سے پتھر کو ہٹا دینا کانٹے کو ہٹا دینا ایک نیکی ہے کسی کو پانی پلا دینا اور کیا نیکی ہے
کسی غریب کو کھانا کھلا دینا
کسی کی مدد کر دینا
کسی کو عمل سکھانا
کسی کو کیا سکھانا کوئی کام کرنا سکھانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو لکھنا نہیں آتا ہے نا ان کو رائٹنگ کرنا سکھا دینا رائٹ یہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی علی رہ گئے علی بتائیں گے کوئی سی ایک نیکی بتانی ہے چھوٹی سی نیکی ہوتی چھوٹی ہے لیکن بہت پاور ہوتی ہے جی علی
راستے سے پتھر ہٹانا
ٹھیک ہے چلیں
اور ہمیں پودوں کو بھی لگانا چاہیے
ہاں پودے لگانا بھی ایک نیکی ہے تو بہرحال بہت ساری نیکیاں ہیں لاسٹ میں آپ کو ایک بکلیٹ کا نام بتاؤں گا وہ جس کے پاس ہوتا ہے جو اس کو دیکھتا ہے فل کرتا ہے پڑھتا ہے تو اس کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی یاد رہتی ہیں اور وہ روزانہ اس پر عمل کرنے والا بھی بن جاتا ہے اس کو وہ بھولتا نہیں ہے ٹھیک ہے پھر توجہ سے کہانی سنیں گے
جی
چھوٹی چھوٹی نیکی کی تو ہم نے بات کر لی اب کہانی کے اندر جن کی بات ہونے والی ہے وہ ایک نیک شخص تھے اللہ کے ولی تھے انہوں نے پوری زندگی جو ہے اللہ پاک کی عبادت میں گزاری تھی لیکن جب ان کا انتقال ہوا نا تو اللہ پاک نے ان کی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دی جی ہاں تو یہ چھوٹی نیکیاں میں نے بتایا نا بہت پاورفل ہوتی ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ پاک ہماری انہی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے ہمارے مغفرت بھی فرما دیتا ہے اور مسلمانوں کو داخل جنت بھی فرما دیتا ہے تو پھر کہانی شروع کریں کہانی کچھ یوں ہے پیارے بچوں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے ایک ولی حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے جب وہ بہت بیمار ہوئے نا ان کی بیماری اور بڑھ گئی اور ان کی بیماری میں ایسا اسٹیج آیا کہ اب ان کا انتقال ہونے والا تھا کیا ہونے والا تھا
انتقال
ہاں ہوتا ہے نا جیسے بیماری نارمل بخار ہوتا ہے لیکن کبھی کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اب کیا ہوتا ہے چانسز ہوتے ہیں کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کو اتنی زیادہ بیماری ہو گئی سچویشن ایسی ہو گئی کہ اب ان کا انتقال ہونے والا تھا انہوں نے رونا شروع کر دیا کیا شروع کر دیا
رونا
شروع کر دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں لوگوں نے پھر سوال کیا پوچھا حضور آپ نے تو 80 سال کتنے سال
ہاں
80 ایئرز اللہ پاک کی عبادت کی ہے نیکیوں میں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے اللہ کی فرما برداری کی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں جنہوں نے نیکیوں والی زندگی گزاری ہے ان کو تو رونا نہیں چاہیے ہے نا تو اس لیے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے پتہ کیا جواب دیا میں اپنے ان گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں جن کی وجہ سے میں اپنے رب کی رحمت سے دور ہو گیا یعنی جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بندہ رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے نا تو کہہ رہے تھے میں اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہوں फिर उन्होंने अपने बच्चों को मुखातब किया, बच्चों से बात करना शुरू की और कहा, बेटा मुझे किबला रुख कर दो। कहाँ कर दो? किबला रुख। किबला रुख का मतलब होता है किबले की तरफ मुंह कर देना, है ना, अपने आप को किबले की तरफ करवा लेना, किबला रुख करना। हम भी नमाज पढ़ते हैं तो हमारा रुख कहाँ पर होता है? किबले की तरफ। तो हम, इसका मतलब यह है कि हमने अपना मुंह अपने आप को किबले की तरफ किया हुआ है, हम किबला रुख हैं। तो किबला रुख कर देना, और जब मेरे जिस्म से पसीना निकलना शुरू हो जाए, मेरी आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाए, तो मेरी मदद करना और कलमा पढ़ना शुरू कर देना। क्या करना शुरू कर देना?
हाँ,
यहाँ पे एक बात बताता हूँ। जब किसी का इंतकाल हो रहा होता है ना, तो उस वक्त जो जिनका इंतकाल हो रहा होता है उनको यूँ नहीं कहते कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, ये नहीं कहते। जी,
कुछ लोग ना दूसरों को भी कहते हैं कलमा पढ़ो, तो ये अच्छी बात होती है।
हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। यानी जिनका इंतकाल हो रहा है ना, उनके अलावा जो लोग बैठे हुए हैं ना उधर, वो भी कलमा पढ़ें, और दूसरे लोग को भी कहें कि आप भी कलमा पढ़ो। सबको क्या करना चाहिए? कलमा पढ़ना चाहिए, यासीन शरीफ पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कहना चाहिए तुम कलमा पढ़ो तुम कलमा पढ़ो, ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि खुद कलमा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। यानी जिनका जो वक्त विसाल होता है, इंतकाल हो रहा होता है, तो उस वक्त अच्छे अच्छे काम खुद करने चाहिए। तो पता है क्या होता है, जो सुन रहे होते हैं ना जिनका इंतकाल होने वाला है, वो सुनते हैं तो वो सुन सुन के वो भी कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या बात पता चली? अगर ऐसा मौका आए और हम वहाँ मौजूद हों, क्या तेज़ आवाज़ से क्या शुरू कर देना चाहिए?
कलमा,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उन्होंने और बात समझाई, कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे दफन कर दो, तो फौरन नहीं चले जाना। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी को दफन करते हैं तो फौरन चले जाते हैं ना, ऐसे छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए। पहला पहला घर है, उनको पीली पीली रात है, इनके साथ हमने ज़िंदगी गुजारी, हमारे साथ रहे, हम उनको ऐसे छोड़ के चले जाएँ फ़ौरन कब्र में बंद करते ही, अच्छी बात नहीं है। अपनों का ख्याल रखना चाहिए। जी,
कुछ लोग कब्र पर मिट्टी डाल के फौरन चले जाते हैं।
फ़ौरन चले जाते हैं, हाँ वही बात हम सुन रहे हैं। तो फ़ौरन मैयत को दफनाने के बाद नहीं आना चाहिए, बल्कि वहाँ पर रुक के थोड़ी देर के लिए जिक्र करना चाहिए, दुआ मांगना चाहिए, अजान देनी चाहिए, ऐसे अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे दफन करते फौरन
नहीं जाना,
ये अच्छी बात नहीं है ना, डर लगेगा। अलग अलग जगह है, नया नया घर है, वो भी कब्रिस्तान, बल्कि क्या करना, मेरी कब्र की सीधी जानिब खड़े होना और कलमा तैयबा का विर्द करना। किसका विर्द करना? कलमा तैयबा क्या है, सब सुना दें। इसका विर्द करना और उसके बाद मेरे लिए दुआ करना। क्या करना?
दुआ
करना। इसकी बरकत से क्या होगा, जो मुनकर नकीर हैं, जो सवालात करते हैं ना कब्र में, तो उनका जवाब देने के लिए मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तुम मेरे पास रहोगे, मेरे लिए दुआएं कर रहे होगे, कलमा पढ़ रहे होगे, तो मैं उनका इजीली जवाब दे सकूंगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और ये सब काम करने के बाद तो फिर तुम भले चले जाना, फिर तुम मुझे अलविदा कह देना, फिर छोड़ के चले जाना, ये काम तुम्हें ज़रूर करना होगा। इस बात की उन्होंने वसीयत की, समझाया। वो कहते हैं उनका बेटा कि उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जैसा जैसा उनके बाबा ने कहा था ना, अभी सारी बातें हमने सुनी हैं, तो वैसा वैसा उनके बच्चों ने किया और उनकी कब्र के पास थोड़ी देर ठहरे भी, कलमा तैयबा का विर्द भी किया और भी अच्छी अच्छी नेकी की वहाँ पर, और उसके बाद वो वापस आ गए। दूसरी रात, कौन सी रात? हाँ, सेकंड नाइट। अब आपको पता है किसी के बाबा का इंतकाल हो तो याद आते हैं ना बाबा, है ना, बहुत याद आते हैं। अभी देखें, अगर हम सबके बाबा हयात हैं, हमारे पास हैं, हमारे घर में हैं, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। कुछ बच्चे बाबा से बदतमीजी करते हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बाबा चले जाएंगे ना, फिर बहुत याद आएंगे, फिर बाबा कभी भी दोबारा नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। तो बाबा का कभी कहना मानना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, और अपनी अम्मी का भी। ठीक है, तो जब वो दूसरी रात सोए तो उनके ख्वाब में उनके बाबा आ गए, हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह, नेक शख्स थे, वो ख्वाब में आ गए। तो उनके बेटे ने कहा, बाबा आपके साथ क्या मामला हुआ, कैसा मामला अल्लाह ने फरमाया आपके साथ, मुझे बताएं। तो बाबा ने पता है क्या कहा, हालांकि उन्होंने 80 साल अल्लाह की इबादत की थी, नेक शख्स थे, इतने नेक हस्ती थे, उन्होंने कहा कि मामला बहुत सख्त था, मामला बहुत सख्त था। क्या हुआ बाबा? उन्होंने कहा, अल्लाह पाक के दरबार में जब मैं गया ना, अल्लाह पाक के बारगाह में मुझे पेश किया गया, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, बताओ मेरे लिए क्या लाया। क्या फरमाया अल्लाह ने?
बताओ मेरे लिए क्या लाया।
हाँ, बताओ मेरे लिए क्या लाया। तो मैंने कहा या अल्लाह मैं 60 हज लाया हूँ। कितने हज लाया हूँ? यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए थे? 60। कितने नेक होंगे, 60 हज लाया हूँ। अल्लाह पाक ने पता है क्या फरमाया? अल्लाह पाक ने फरमाया कबूल नहीं। क्या तेरे हज
कबूल?
अल्लाह अकबर। फरमाया और क्या लाए हो? उन्होंने कहा या अल्लाह पाक मैं 1000 दिरहम का सदका और खैरात लाया हूँ। यानी दिरहम कहते हैं चांदी के सिक्के, है ना, सिल्वर कॉइन्स। 1000 मैंने अल्लाह के नाम में खैरात किए हैं, सदका किए हैं, ये लेकर आया हूँ। अल्लाह पाक ने फिर फरमाया कबूल नहीं। क्या फरमाया? हाँ, तेरा ये अमल भी कबूल
नहीं।
अब बताएं, ये एक नेकी पेश की कबूल नहीं, दूसरी भी नेकी पेश की कबूल नहीं, तो घबराने वाली बात है। तो उन्होंने फरमाया या अल्लाह मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी नेकी जब कबूल नहीं तो मैं तो बर्बाद हो गया, अब तो जहन्नम में जाऊँगा मैं, अब क्या होगा मेरा। उस वक्त अल्लाह पाक ने पता है क्या फरमाया? अल्लाह पाक ने फरमाया क्या तुझे याद नहीं, क्या तुझे
याद
नहीं, एक मर्तबा तू अपने घर से निकला था, रास्ते में जा रहा था, रास्ते में एक कांटा था, रास्ते में क्या था, एक
कांटा था।
तूने उसको, उस कांटे को रास्ते से हटा दिया था ताकि किसी को तकलीफ ना हो। क्या ना हो?
तकलीफ ना हो।
कितनी छोटी सी नेकी है ना, ऐसी आप रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर आता है आपने पाँव से यूं साइड में, क्या पत्थर साइड में, कोई इतनी मेहनत भी नहीं लगी। तो उन्होंने वो रास्ते से कांटे को हटा दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया तुझे याद नहीं तूने इस तरीके से काम किया था, हमें तेरी वो नेकी पसंद आ गई है, तेरी वो नेकी हमने कबूल कर ली है और हम तेरी मग़फ़िरत कर रहे हैं। कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है कि छोटे से छोटी नेकी भी बसा अवकात क्या होता है, अल्लाह पाक उससे खुश हो जाता है और बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। क्या कर देता है?
मग़फ़िरत फरमा देता है।
तो पता चला कि छोटे से छोटी नेकी छोड़नी नहीं चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए?
हाँ,
कुछ होता है ना भाई, मैं तो बस 5 नमाजें पढ़ूंगा और बस मैं सच बोलूंगा बस, और मैं कोई नेक काम नहीं करूंगा, तो बस ये 2-3 काम करूंगा और नहीं करूंगा। क्या पता आप जो नेकी छोड़ रहे हैं उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू हो कि अल्लाह पाक उसी से खुश हो जाए। कोई बच्चा है वो अपने अम्मी अब्बू का कहना नहीं मानता, कहना मानना नेकी है ना, तो ये इससे महरूम हो जाए, क्या पता इसी नेकी की वजह से उसकी मग़फ़िरत होनी हो और वो नेकी ना करे, तो बताएं महरूमी है। इसी तरह और भी बहुत सारी नेकियाँ हैं, छोटी छोटी नेकियाँ जो हमें करनी चाहिए अगर हम नहीं करते। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिर्फ
फर्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं।
फजर की 2 रकत, जोहर की
दो,
नहीं जोहर की तो दो नहीं होती, 4 रकत, असर की
4 रकत,
ये फ़र्ज़ बता रहा हूँ जो फ़र्ज़ हैं, और मगरिब की
3
और इशा की
4
फ़र्ज़ और 3 वितर वो वाजिब होते हैं। इसके अलावा वो सुन्नतें भी नहीं पढ़ते, नफल भी नहीं पढ़ते, छोड़ो कोई बात नहीं ऐसे कह देते नहीं, सुन्नतें मौकदा को तो पढ़ना ज़रूरी है और जो सुन्नतें गैर मौकदा हैं जो नफल हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। क्या पता अल्लाह पाक इस नफल की वजह से हमारी क्या कर दे,
मग़फ़िरत
फरमा दे। छोटा नहीं समझना चाहिए। जी अब आप सवाल करें।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी नमाजें छोड़ देते हैं, सिर्फ एक पढ़ते हैं।
एक पढ़ते हैं ये भी ठीक नहीं है। देखें कोई 4 नमाजें भी पढ़े और एक नमाज नहीं पढ़े उसको भी नमाजी नहीं कहते, उसको भी बेनमाजी कहते हैं। क्या कहते हैं?
बेनमाजी
कहते हैं। तो नमाजें कितनी हैं?
5।
तो पूरी की पूरी कितनी पढ़नी है?
5
पढ़नी है। एक और बात, ये तो हमने सुन लिया कि छोटे से छोटे ने कि छोड़ देनी चाहिए। एक और बात सुनने वाली ये है अली, कि छोटे से छोटा गुनाह भी छोड़ना चाहिए। हाँ, अब कोई ऐसा ना कोई कहे अरे छोटा सा तो गुनाह है, चलो झूठ बोल देता हूँ, क्या पता बोल दूंगा मैंने जो है ना होमवर्क किया हुआ है, टीचर मैंने होमवर्क किया हुआ है, वो कॉपी ना मैं घर पे भूल गया, तो मैं झूठ बोल देता हूँ बच जाऊँगा। अभी इसको क्या लग रहा है, छोटी सी बात, लेकिन कहीं ऐसा ना हो अल्लाह पाक इसी छोटे से गुनाह की वजह से हमसे नाराज़ हो जाए, हमारी सारी नेकियाँ ज़ाया हो जाए। तो छोटे से छोटा गुनाह भी
नहीं
करना चाहिए, छोटी से छोटी नेकी छोड़ देनी चाहिए और छोटे से छोटे गुनाह करना नहीं चाहिए। ये बात बहुत अहम है। बड़ा गुनाह तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो हमें छोटा लग रहा हो ना वो छोटा होता नहीं है। इस तरह नेकी छोटी नहीं होती, लगती तो छोटी है लेकिन कितनी पावर है नेकी के अंदर। इसी तरह गुनाह छोटा तो लगता है लेकिन वो होता बहुत ख़तरनाक है। आप बैठे में आपने ऐसी चुटकी नोच दी अपने दोस्त के, आप क्या समझ रहे हैं तो कुछ भी नहीं किया, अरे चुटकी तो नोची है हल्के से यूँ करके, नहीं उसके तकलीफ़ हुई, उसका दिल दुख गया, आपको पता है मुसलमान का दिल दुखता है ना, अल्लाह बहुत नाराज़ होता है। उसका दिल दुख गया और उसकी वजह से आपकी सारी नेकियाँ ज़ाया हो जाएँ तो फिर क्या होगा? तो नियत कर लें, क्या कर लें? इस कहानी से, इस वाक्य से हमें सीखने को मिला, हम कोई भी छोटी से छोटी नेकी छोड़ेंगे
नहीं।
और कोई भी छोटे से छोटा गुनाह करेंगे
नहीं।
कह दीजिए
इंशाअल्लाह।
आखिरी बात इनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, फिर अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जी,
वो आपने बुकलेट का बताया था, वो कौन सी है?
हाँ, ये तो बताना रह गया है, वो बुकलेट है नेक अमाल। क्या नाम है उसका? अमीर अहले सुन्नत ने ना बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, सब के लिए नेक अमाल का एक रिसाला दिया है। उसमें बहुत सारी नेकियां लिखी हुई हैं, आपने ये नेकी की, आपने ये नेकी की, आपने ये नेकी की, और कुछ बुराइयां भी लिखी हुई हैं उसमें। किस लिए लिखी हुई है पता है? बचने के लिए। आप इस बुराई से बचे, आप इस बुराई से बचे, आप इस बुराई से बचे। तो वो हमारी जेब में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? या फिर जहाँ पे हम सोते हैं, ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ कहीं रख लें। जब आपको टाइम मिले, टाइम फिक्स कर लें, उसको निकालें, खोलें और डेली उसको फिल करें। आज मैंने हाँ ये अच्छा काम किया है, ओके, ये भी मैंने अच्छा काम किया, ओके। और जो आप समझें ओ ये इस पे तो मैंने आज अमल ही नहीं किया, उस पे आप ज़ीरो बना दें, गोल दायरा बना दें, सिफर लगा दें, और नेक्स्ट डे कोशिश करें कि मैंने ये काम करना है। क्या करना है? इंशाल्लाह इस रिसाले की बरकत से क्या होगा, आप छोटी नेकी भी नहीं भूलेंगे और कोई गुनाह कर रहे होंगे तो फौरन उससे बच जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ हमने सुना इसे याद रखने, दूसरे तक पहुंचाने की तौफीक मरहमत फरमाए। और कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो YouTube पर क्या लिखना होगा? किड्स मदनी चैनल, वहाँ लिखिए किड्स मदनी चैनल लिखिए। आप अंदर जाइए किड्स मदनी चैनल YouTube के अंदर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला प्रोग्राम, सुनो कहानी वाला प्रोग्राम नहीं, और भी प्रोग्राम मिलेंगे, वो सब सुनिए, देखिए, समझिए, अमल कीजिए। अल्लाह पाक हमें अमल की बरकतें नसीब फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कहानी
सुनो, कहानी
सुनो, कहानी
जल्दी जल्दी
सुनो, कहानी
सुनो, कहानी।